छायावाद। हिंदी कविता में छायावाद का अर्थ उस काव्यात्मक प्रवृत्ति से है जो पहले पहल 1915 से 1925 के बीच प्रसाद, निराला और पंत की कविताओं में दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के आंसू, निराला की जूही की कली और सुमित्रानंद पंत की पल्लव की कविताओं से इस काव्य की प्रवृत्ति का प्रारंभिक रुझान प्रकट हुआ। छायावाद वस्तुतः स्वच्छंदतावाद है जो सामान्य रूप से उच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट के संसार के सभी देशों और जातियों के विभिन्न कालों में पड़ने वाले समय में कभी न कभी व्यक्त होती रही है। हिंदी में छायावादी कविता प्रथमतया रीतिकालीन स्थूल एवं ऐन्द्र सिंगारिता और द्विवेदी योगिन वित्तात्मक उपदेशात्मक प्रवृत्ति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी तो दूसरी ओर वह विश्व रंगमंच पर उदित हो रहे अनेक स्वतंत्रवादी विचारों से प्रभाव ग्रहण कर रही थी। तीसरी ओर वह अंग्रेजी के रोमेंटिंग और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य से भावनात्मक एवं रचनात्मक आधार ग्रहण कर रही थी तो चौथी ओर भारतीय राजनीति में उभर रही चेतना तथा समाज के बंद वातावरण में जन्म ले रही नई बंधन विरोधी हवाओं से जीवन रस प्राप्त कर रही थी। पांचवी ओर भारत की विशाल सांस्कृतिक एवं दार्शनिक परंपरा के विशेष रूप से विवेकानंद जैसे विचारों से तत्व चिंतन के बीज ग्रहण कर रही थी। कहना ना होगा कि संभवतः इसी कारण जहां एक ओर छायावाद मनुष्य की मुक्ति का काव्य है तो वहीं दूसरी ओर वह व्यक्तिगत अनुभूतियों, मानवतावादी विचार, स्वच्छंद प्रकृति, सौंदर्य प्रेम, राष्ट्रीयता तथा परंपरा की नवीन व्याख्या को समेट कर चलता है। छायावाद नाम हिंदी में पहले पहल श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की एक आलेख श्रृंखला में प्रयुक्त हुआ। अनेक परवर्ती व्यंगात्मक एवं उपहासमत्मक तथा विरोधी टिप्पणियों के बावजूद यह नाम चल पड़ा। छायावाद शब्द के प्रयोगकर्ताओं ने छाया शब्द की अनेक व्याख्याएं की। इस नई प्रवृत्ति के विरोधियों ने इसका अर्थ एक और परछाई अर्थात प्रभाव या अनुकरण से लिया तो वहीं दूसरी ओर अस्पष्टता एवं रहस्यात्मकता से अनेक आलोचकों और कवियों ने इसे सूक्ष्म एवं अवास्तविक के अर्थ में प्रयुक्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को आध्यात्मिकता प्रधान प्रतीकवादी काव्य के रूप में परिभाषित किया। जयशंकर प्रसाद ने संस्कृत के एक उदाहरण से मोती के भीतर छाया जैसी तरलता में छाया का अर्थ पानी, चमक, क्रांति से लिया। उनके अनुसार छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की भंगिमा में अधिक निर्भर करती है। छायावाद हिंदी में एक क्रांतिकारी जीवन दृष्टि से लेकर प्रस्तुत हुआ। यह हिंदी नवजागरण का उत्कर्ष साबित हुआ जिसमें एक ओर परंपरा का गहरा प्रभाव था तो दूसरी ओर नई उभरती चेतना का। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छायावादी काव्य में राष्ट्र जागरण से अधिक समस्त चेतना का जागरण और आह्वान है। उसमें अंतर्निहित शक्ति के विकास का रचनात्मक उपक्रम है। यहाँ राष्ट्रीय से अधिक संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण प्रधान है। राष्ट्रीय जागरण वस्तुतः सांस्कृतिक जागरण के अंग के रूप में आता है तो पुनर्जागरण की मूल धारा के अनुकूल है। छायावाद की राष्ट्रीयता का आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। इस तरह छायावाद नवजागरण को सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से विस्तृत कर सांस्कृतिक नवजागरण तक ले जाता है। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह जैसे आलोचक छायावाद का संबंध तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़ते हैं। इस अर्थ में छायावाद नितांत भारतीय परिस्थितियों में रूपाकार ग्रहण करता है। व्यक्तिता एवं व्यक्ति स्वातंत्र की भावना छायावाद का केंद्रीय स्वर है। छायावादी कवियों ने अपने को सामाजिक रूढ़ियों बंधनों से मुक्त करने के लिए भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों की निर्व्यक्तिकता को आवरण की तरह उतार फेंका। भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों के विपरीत उन्होंने अनुभूतियों को अपना बनाकर प्रस्तुत किया। निजी अनुभूतियों पूर्ण साहस के साथ अभिव्यक्त की जाने लगी। निजी व्यक्तित्व एवं अस्मिता को अपनाकर कवि ने सामाजिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त की। निराला ने लिखा है, मैं शैली अपनाई तथा देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत ने लिखा, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। समाज के भय या संकोच से एक कवि व्यक्ति के रूप में जिन दुर्बलताओं और अनुभूतियों को व्यक्त करने में भय का अनुभव करते थे, छायावादी कवियों ने उन्हें साहस पूर्वक अपनी अनुभूतियां कहकर व्यक्त किया। पंत के उच्छ्वास आंसू और ग्रंथि में प्रसाद के काव्य आंसू में, निराला के अनेक गीतों सरोज स्मृति और वन बेला में और महादेवी वर्मा के विरह गीतों में यह व्यक्तिक अनुभूति व्यक्त हुई है। सबसे पहले यह कवि की अपनी अनुभूति है, दूसरे स्तर पर भले ही यह समाज के अन्य लोगों की अनुभूतियों की तरह हो। पंत सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में प्रेम और प्रणय संबंधों में विशेष रूप से यह व्यक्तिकता क्रांतिकारी महत्व रखती है। छायावाद में व्यक्तिक स्वतंत्र और आत्मविकास की प्रक्रिया परस्पर संपद दिखाई देती है। वन गुहा कुंज मरु अचल में मैं हूँ खोज रहा अपना विकास। छायावाद के शुरुआती दौर में व्यक्ति स्वातंत्र की भावना जहां सामंती ढंग के बंद समाज से घुटन की प्रतिक्रिया स्वरूप होने के कारण विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई, वहीं आखिरी दौर में उसने व्यक्तिवादी अहम का रूप धारण कर लिया। मैं तो अबाधगति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की। व्यक्ति सत्ता की विकृति का गहरा संबंध स्वतंत्रता के महास्वप्न से ही है। एक स्वतंत्र व्यक्ति ही समाज की स्वतंत्रता के रास्ते खोल सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के संघर्ष प्रायः व्यक्ति स्वतंत्र की भावना का भी प्रसार करते हैं। यह अकारण नहीं है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वाधीनता की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए मैं की शैली अपनाई। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह छायावाद के शुरुआत के पूर्व की स्थिति है। छायावाद के आखिरी दौर तक आते आते कविता में ही नहीं स्वतंत्रता आंदोलन और समाज की अन्य गतिविधियों में भी व्यक्ति सत्ता के अहम की अभिव्यक्ति होने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसी उद्घोषणाओं में इसकी झलक मिलती है। ध्यान दें कि यहाँ भी शैली मैं की ही है। मनुष्य निर्मित व्यवस्था और पराधीनता के बोध से असंतुष्ट होकर प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावादी व्यक्तिता की एक प्रमुख वृत्ति है। छायावादी कवियों का प्रकृति प्रेम सूक्ष्मता नवीनता एवं ताजगी भरा है। प्रकृति उनके लिए एक जड़ वस्तु न होकर चेतनामय है। समाज के समानांतर वह संपूर्ण दुनिया है। नामवर सिंह इसे आधुनिक वैज्ञानिकता का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों को जानने की चेष्टा की। धर्म ने प्रकृति के प्रति अंधश्रद्धा का भाव जगाकर जहां प्रकृति को जानने से रोका वहां विज्ञान ने विवेक के द्वारा उसका रहस्योद्घाटन किया। धार्मिक अंधविश्वास ने जिस प्रकृति से मानव को बांध रखा था विज्ञान ने उसी को बंधन से मुक्त किया। विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति से अलगा कर फिर उसे प्रकृति के साथ अच्छी तरह से लगा दिया। जिस तरह नवीन औद्योगिक व्यवस्था ने व्यक्ति परिवारों को सम्मिलित कुटुंब से अलगा कर उनमें उच्च स्तर का परस्पर स्नेह सौहार्द स्थापित किया, उसी तरह विज्ञान ने भी मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करके प्रकृति के प्रति उसकी रागात्मकता बढ़ा दी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जिस युग में मनुष्य ने प्रकृति पर सबसे अधिक विजय प्राप्त की उसी समय उसने प्रकृति पर सबसे अच्छी कविताएं लिखी। वाल्मीकि कालिदास का प्रकृति काव्य प्रकृति पर आरंभिक विजय का परिणाम है तो छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण आधुनिक विजय का। छायावादी कवि प्रकृति के भीतर मानवीय गतिविधियों का दर्शन करते हैं। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण एक नया प्रस्थान प्रदर्शित करता है। अनेक स्थलों पर प्रकृति के साथ जिज्ञासा का संबंध भी दिखलाई देता है। छायावादी कवियों का सौंदर्य वर्णन सूक्ष्म गतिविधियों को इस तरह उकेरता है कि उसमें सांस लेती हुई छाया का स्पंदन भी दिखाई देता है। स्त्री सौंदर्य के क्षेत्र में भी छायावादी कवियों ने स्थूल दैहिकता के स्थान पर स्वस्थ मार्शल एंड्री वर्णन के साथ साथ भावनात्मक सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार छायावादी नारी के दो रूपों में देखता है। एक तो उसका दैहिक रूप जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता है। इस रूप में छायावाद ने नारी को स्वप्निल एवं दैहिक बना दिया जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही है। दूसरा रूप नारी का लौकिक है जिसे छायावादी बंधन मुक्त करना चाहता है। निसंदेह छायावाद ने नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया है। कामायनी की श्रद्धा का चित्र देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल खुला अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। छायावादी कवियों ने प्रकृति की अनेक गतिविधियों में स्त्री को देखा। इसमें स्त्री के अतिरूप की आकांक्षा साफ देखी जा सकती है। निराला संध्या को परी की तरह देखते हैं। दिवसावसान का समय था मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। निराला की संध्या की गतिविधियों में स्त्री संबंधित विक्षण की सूक्ष्मता साफ पढ़ी जा सकती है। अलसता की सीलता किंतु कोमलता की वह बेला सखी निर्वता के कंधे पर डाले वहां छा के अंबर पथ से चली। प्रसाद ने अपने सुप्रसिद्ध गीत बीती विभावरी में ऊषा को नागरी की तरह देखते हैं। प्रकृति और स्त्री की अपरस्परता वस्तुतः एक उदात्त भावना से पैदा होती है जिसके पीछे भावनात्मक संलग्नता की गहनता है। नीतियुगिन कवियों ने नारी के भावों को कमान समझा था। छायावादी कवियों के लिए उन्हीं करोड़ भावों में था आकाश। इन कवियों ने नारी को श्रद्धा सहचरी प्रेसी और माँ के रूप में सम्मान सहित वर्णित किया। देवी माँ सहचरी प्राण छायावाद में प्रेम की अकुठन अभिव्यक्ति ने उसके स्त्री चित्रण को गहराई प्रदान की। स्त्री के प्रति पुरुष की अकुंठ प्रेम भावना को अभिव्यक्ति मिली। यह द्विवेदी युगीन वैष्णवी भावुकता से कदम आगे की वैचारिकता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी की तुलना में नारी तुम केवल श्रद्धा हो को देखने पर इसे स्पष्टतया समझा जा सकता है। अबलापन और देवीपन वस्तुतः समाज की वास्तविक समझ पर आधारित विचार नहीं है। छायावादी श्रद्धा जी छवि वस्तुतः स्त्री के अतिरूप गढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। छायावादी कवि निराला ने तोड़ती पत्थर में वास्तविक सामाजिक स्थिति में स्त्री को देखा है। इस कविता में स्त्री के अबलापन का मीठ टूटता है। यहाँ अन्याय और शोषण भोक्ती स्त्री की गहन आलोचनात्मक दृष्टि और संघर्ष शक्ति उभरते हैं। दुखी रोती धोती स्त्री की तुलना में अन्याय भोक्ती संघर्षशील स्त्री वास्तविकता के अधिक निकट है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में धनिया मुन्नी सीलिया सोफिया पठानी सुभद्रा नैनास और सुमन इसके ज्यादा ठोस उदाहरण है। तोड़ती पत्थर की मजदूरीन औरत इसी कड़ी का हिस्सा है। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। इनकी दृष्टि बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर गई और वहीं ज्यादा रमी। बाह्य भौतिक जगत का वर्णन न करके इन कवियों ने अंतर मन मनोजगत भाव जगत का वर्णन अधिक किया। नाम वर्षी के अनुसार यह भावुकता मूलतः व्यक्तिवाद से पैदा हुई। चूँकि कवि का विद्रोह सामाजिक विद्रोह के प्रति सामूहिक न होकर व्यक्तिगत था, इसलिए उसका जीवन एकांगी हो गया। उसे कदम कदम पर संघर्षमय पराजय का अनुभव होने लगा, जिससे दुख और वेदना उसके सबसे निकट संगी बन गए। छायावाद की प्रारंभिक रचनाओं में उच्छ्वास और आंसू से लेकर प्रसाद के झरना पंत का उनमय गुंजन एवं कामायनी के एकांकी मन की प्रारंभिक चिंता इसी दुख के उदाहरण है। प्रसाद कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। दुख और वेदना की इस मनुस्मृति ने छायावाद के कवियों को एक हद तक पलायनवादी भी बनाया, जो तत्कालीन राजनैतिक उथल पुथल सामाजिक बंधनों गुलामी जैसी कठोर स्थितियों से भरे जीवन और जगत की भयंकर एवं कटु वास्तविकताओं से भागकर प्रकृति एवं नारी के आचरण कल्पना लोक में विचरण करते हैं। छायावाद ने समाज की परिस्थितियों को प्रायः चित्रित नहीं किया, परंतु राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वाधीनता की चेतना छायावाद के केंद्र में मौजूद थी। छायावादी कविता कथन कहन की यथार्थवादी रीति का प्रायः प्रयोग नहीं करती, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के चित्र यहाँ सीधे रूपों में नहीं आते, परंतु भिन्न रास्तों से स्वाधीनता की संकल्पना यहाँ प्रकट होती है। पहला सीधा और स्पष्ट स्वर गौरव गान का है, विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद के काव्य संसार में। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। दूसरा स्वर है अतीत का महिमा मंडन। यूँ तो यह पुनरुत्थानवाद की प्रवृत्ति है, परंतु छायावाद में इसका स्वर स्पष्ट रूप से वर्तमान के पराजय बोध से निकलने के लिए पकड़े गए सहारे की तरह आता है। यह पुनरुत्थान भावना जो कि अमानवीय शत्रुता को प्रोत्साहित नहीं करती, इसलिए इसे राष्ट्रीय भावना का हिस्सा माना जा सकता है। राष्ट्रीय भावना का तीसरा स्वर आह्वान गीतों और जागरण गीतों में दिखाई देता है। यह अकारण नहीं है कि प्रात और जागरण इन दोनों पर छायावादी कवियों ने अनेक कविताएं लिखी हैं। बीती भी भावरी जागरी, जाग तुझको दूर जाना और जागो फिर एक बार। सभी कविताओं में जागने का दैनंदिन अर्थ ही नहीं है, यह वस्तुतः स्वतंत्र भावना के जागने से संबंधित है। आह्वान गीतों में स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को ऊर्जास्वित करने का भाव ही प्रमुख है। हिमांद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पत्थ है बड़े चलो बड़े चलो। यह भारत भारती की परंपरा का उचित विकास है। राष्ट्रीय भावना का चौथा स्वर निराशा संघर्षशीलता त्याग और विजय की आकांक्षा के भावों के क्रमशः निरूपण में व्यक्त होता है। कामायनी राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में ये भाव प्रायः इसी क्रम में विन्यस्त हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ निराशा से होता है और अंत विजय की आशा से। यह वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन के 1925 से 1936 ईस्वी के मध्य निर्मित परिदृश्य का एक भावना रूपक है। यहाँ कविता रंगमंच पर अवतरित भाव श्रृंखला वस्तुतः स्वतंत्रता आंदोलन में जनता की मन स्थिति का प्रतिबिंबन करती है। राष्ट्रीय भावना का प्रायः सर्वाधिक मुखर प्रतिबिंबन पैशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, छत्रपति शिवाजी का पत्र जैसी कविताओं में होता है। इन कविताओं में अतीत के उन नायकों के जीवन और विचारों, संघर्षशीलता और बलिदान के विविध तरीकों से केंद्र में रखा है जो राष्ट्रीय आंदोलन में पराधीनता के बंध तोड़ने के बड़े प्रेरक हो सकते हैं। इन कविताओं में वर्तमान के संदर्भ प्रायः स्पष्ट हैं। पराधीनता के चित्र भले ही सदृश अतीत से लिए गए हों, परंतु संकेत स्पष्टतया वर्तमान की ओर है। कौन लेगा भार या कौन विचलेगा नहीं, साधना पिचासो की बिखर चूर चूर होके धूली से उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। एक भूत शक्तियों से एक हो परिवार, पहले संवेदना व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाए देखो परिणाम, फिर स्थिर न रहेंगे पैर, पस्त हौसला होगा ध्वस्त होगा साम्राज्य। जितने विचार आज मारते तरंग हैं साम्राज्यवादियों की भोग वासनाओं में, हिंदुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, दासता के पास कट जाएंगे। यहाँ साम्राज्य का स्पष्ट आशय अंग्रेजी साम्राज्यवाद और दासता का वर्तमान दासता से है। अतीत की कथा कहते हुए वर्तमान का अतीत में प्रक्षेपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसे कामायनी, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी कविताओं और चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटकों में साफ साफ देखा जा सकता है। राष्ट्रीय भावना का एक अन्य प्रतिबिंबन शक्ति के प्रति सम्मोहन में मिलता है। शक्ति एक परिकल्पना है जिसके कई स्रोत हो सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्रप्रेम की अनुभूति में और उनके संश्लेष में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। यह बात विशेष रूप से निराला के उदाहरण से समझी जा सकती है। जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा आदि कविताओं के भाव आधार भले ही अलग हों, परंतु इन सब में शक्ति अंतर्निहित है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन उचित ही है कि छायावाद की राष्ट्रीयता में आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। छायावाद में भावनात्मकता की प्रबलता से कल्पनाशीलता उत्पन्न हुई। छायावादी कवियों की कल्पना मन की आंख थी, वह उनके स्वतंत्रता की धोतक और मुक्ति विद्रोह आनंद आदि की आकांक्षा की प्रतीक थी। कल्पना उनका राग भी थी व बोध भी। कल्पना से छायावादी काव्य में प्रचुर मात्रा में अप्रस्तुत विधान की सृष्टि हुई। सुमित्रानंदन पंत के बादल अधिकांशतः कल्पना पुंज है। हम सागर के धवल हाश हैं, जल के धूम गगन की धूल, अनिल फेन उषा के पल्लव, वारी वसन वसुधा के मूल, नभ में अवनि अवनि में अंबर, शलील भस्म मारुत के फूल, हम ही हैं जल में थल में, जल में थल में, दिन के तम पावक के तूल। छायावादी कवि कल्पना में जीते हैं। कामायनी के मनु कल्पना में आ भरते हुए कहते हैं, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता, सुख सपनों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। व्यक्तिकता, भावनात्मकता और कल्पनाशीलता ने छायावाद में अनुभूति को केंद्रीय बना लिया। इस अनुभूति में इंद्रियता का महत्वपूर्ण स्थान था। छायावाद की अनुभूति प्रवण कवियों ने वर्ण, ध्वनि, स्पर्श और रस आदि के अत्यंत इंद्रिय बोधक चित्र खींचे हैं। जहां द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता थी, वहीं छायावाद में व्यक्तिक अनुभूति की भावुक अभिव्यंजना हुई जो द्विवेदी युग में ना हो सकी थी। छायावादी कल्पना ने अतीत यात्रा की। कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट आदि संस्कृत कवियों की ललित पदावली से होड़ लेने की कोशिशों में उनकी छायाएं पढ़ने लगी। ब्रजभाषा की कविताओं, टैगोर की बांग्ला कविताओं और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की शब्दावली और वाक्य रचना, ये सब इनकी कविता में आया। छायावादियों ने छंद परिपाटी के विरुद्ध मौलिक आधार पर छंदों की रचना की। छंद विधान में भाव की प्रमुखता से स्वच्छंद छंद अथवा मुक्त छंद का प्रचलन हुआ। इसके प्रवर्तक निराला हुए। इनकी जूही की कली इसका प्रारंभिक उदाहरण है। आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया है कि छायावादी कवियों में लाक्षणिक साहस सबसे अधिक है। कल्पना प्रधान काव्य में अनूठी उपमाओं, मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग और प्रतीकों का बाहुल्य है। अवनि अंबर की रूपली सीप में अरल मोती सा जालधि सा जब कापता, तम तमाले ने फूल गिरा दिन पलके खोली। छायावाद का ऐतिहासिक कार्य संक्षेप में रामविलास शर्मा के शब्दों में यह है कि द्विवेदी युग की वैष्णवी श्रद्धा और सशंक नैतिकता के बदले पहले पहल अविश्वास और मानवीय प्रेम और श्रृंगार के स्वर सुनाई पड़ते हैं। नैतिकता और विरोध ने उश्रृंखलता का रूप नहीं लिया। नए कवियों ने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए उस सामाजिक स्वाधीनता की मांग की जिसे पिछले युग के सामाजिक बंधन दबा कर रखना चाहते थे। इन कवियों ने नए ढंग से प्रकृति का चित्रण शुरू किया। इस तरह कविता को उन्होंने लक्षण ग्रंथों की सीमाओं से उबार लिया। उद्दीपन या उपदेश के लिए प्रकृति का उपयोग किया गया, लेकिन पहले पहल हिंदी कविता में इसके यथार्थ चित्र देखने को मिले। सामाजिक रचनाओं में दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की तो साथ ही साथ सामाजिक ढांचा बदलने के लिए विप्लव और क्रांति की मांग भी की। जीवन की दारुण व्यथा को वो भुला नहीं सके। छंद और भाषा में नए प्रयोग करके उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों को बता दिया कि हिंदी कविता में एक नए युग का आरंभ हो गया।